नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया आज शुरू हो जाएगी। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल है, जबकि उम्मीदवार 9 अप्रैल तक नाम वापस ले सकते हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की अधिसूचना 2 अप्रैल को जारी होगी। इस चरण में 142 विधानसभा सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग ने 170 पुलिस थाना प्रभारियों को हटा दिया है। इनमें भवानीपुर और नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र भी शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सिफारिशों के आधार पर आयोग ने 11 उच्च पदस्थ अधिकारियों सहित कुल 184 पुलिस अधिकारियों के तबादलों और तैनाती को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज नमो ऐप के माध्यम से मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत असम और पुदुचेरी के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में असम की प्रगति सबके सामने है और राज्य विभिन्न क्षेत्रों में विकास की उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। श्री मोदी ने कहा कि डबल इंजन की एनडीए सरकार ने पिछले 5 वर्ष में पुदुचेरी के लोगों की आकांक्षाएं पूरी की हैं। लोकसभा में आज दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य कंपनियों और व्यक्तियों के बीच प्रक्रियात्मक विलंब और व्याख्या संबंधी मुद्दों का समाधान करना है। राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में समूह ए जनरल ड्यूटी अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले सामान्य नियमों को विनियमित करना है। सरकार ने कहा है कि देश भर के सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। सरकार ने जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील दोहराई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर घटा दिया गया है। घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क भी लगाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सामान्य है, वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति लगभग 70% तक पहुंच गई है। सरकार ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च गुणवत्ता वाले केरोसिन तेल के वितरण की अनुमति दे दी है। विश्व भर में ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने के कारण ये निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था की जरूरतों को पूरा करना है, जहां सामान्य परिस्थितियों में केरोसिन का उपयोग बंद कर दिया गया था। इसकी अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और अगले आदेश तक वैध रहेगी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कलिबाफ ने अमरीका पर गुप्त रूप से जमीनी सैन्य कार्रवाई की योजना बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर अमरीकी सैनिक ईरान में प्रवेश करते हैं तो ईरानी सेना जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता का आह्वान करते हुए कहा कि संघर्ष अब अत्यधिक संवेदनशील स्थिति में पहुंच गया है। अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम के अनुसार 3,500 मरीन और नौसैनिकों के साथ अमरीकी युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली पश्चिम एशिया पहुंच गया है। लेबनान में इसराइल सैन्य अभियान तेज हो गए हैं। इसराइल ने दक्षिण लेबनान में अपने बफर जोन का विस्तार किया है और नए हमले किए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस विस्तार का आदेश देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य हिजबुल्लाह की घुसपैठ को रोकना और इसराइल की उत्तरी सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करना है। लेबनान के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि विभिन्न क्षेत्रों में हुए हमलों में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात मुंबई में कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। 220 रन का लक्ष्य मुंबई इंडियंस ने 4 विकेट खोकर अंतिम ओवर में हासिल कर लिया। मुंबई के गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। ये मैच गुवाहाटी में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।